السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. देखते हैं आज का लेसन आयत नंबर 132 से 141 तक सूरतुल बकारा। हम इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा देख रहे थे और उसके अंदर हमने काफ़ी बातें सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं सीखी हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमने दुआ कैसे मांगनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया और साथ साथ एक दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना। आपने ये दुआ याद की है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्योंकि ये दुआ बहुत ज़रूरी है कि इंसान चाहे नेकी का काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन इस दुआ को मांगना ना भूलें कि कितनी बड़ी नेकी हो। आप कुर्बानी करें, चाहे आप ईद पे कुर्बानी करते हैं, ये ना देखें हमने तो इतना पैसा खर्च कर दिया अब तो ये कबूल ही होगी, या हमने तो इतनी अच्छी नमाज पढ़ी है अब तो ये कबूल ही होनी चाहिए, हम हज पे जा रहे हैं तो कबूल ही कबूल है जनाब। नहीं, कबूल ही कबूल है कह के नहीं सोच लिया करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लोग सोचते हैं बस अल्लाह ने बुला लिया तो कबूल हो, है ही तो बुलाया ना, कबूल पहले हुआ जी, बाद में आपको बुलाया गया। तो देखें, अंबिया के तरीके से सीखना चाहिए बातों को, ना कि लोगों के कहने से। तो हमें ये पता चलता है कि हम भी हमेशा दुआ करते रहें। जब आप ये कुरान सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी दुआ करते रहें, रब्बना तकब्बल मिन्ना, कि हमारा बैठना यहाँ पे कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि तू तू ही है सुनने वाला जानने वाला। तो ये 127 आयत में जो ये बात है, इसको आपने इसी तरह याद कर लेना है। और ये भी याद रखिए, आयशा रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, जब कुरान में पढ़ा था कि कोई जब वो नेकी करते हैं तो उनके दिल कांपते हैं, नेकी करके कांपते हैं, तो उन्होंने समझा कि मतलब नेकी करते हैं शायद उन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इसलिए उनके दिल कांपते हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछ लिया, ये कौन लोग हैं जो इस तरह उनके दिल वजलत कुलूब, उनके दिल कांप रहे होते हैं, क्या ये वो हैं जो गुनाह करने वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक की बेटी, नहीं, ये वो हैं जो नेकी करते हैं और फिर भी डरते रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कबूल भी किया या नहीं। तो जब इब्राहीम अलैहि सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर ये दुआ मांग रहे हो, तो हमें तो ज्यादा मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो अमल भी उस तरह से इस काबिल नहीं है। और हमें ये बहुत सारी इसमें बातें पता चलती हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने चुन लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तू हमें भी चुन ले। और अल्लाह ताला का ये चुनना कोई इसका बेसिस नहीं होती कि किसी के पास कितना पैसा है तो इसलिए उसको, वो तो शायद बड़ा चुना हुआ है, बड़ा अल्लाह ताला का चोजन वन है। नहीं, चोजन वन वो होता है जिसको अल्लाह ताला दीन के लिए चुन लेता है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और हमने देखा भी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जगह को ना सिर्फ तामीर किया, बल्कि जहाँ उसकी कबूलियत के लिए दुआ की, वहाँ पे उसकी बरकत की भी दुआ की है कि अल्लाह ताला यहाँ पे रहने वालों को अमन भी दे और रोज़ी भी दे। और ये सब बातें उनके लिए मांगी थी, तो जिसकी वजह से ही आज ये घर आज तक आबाद है। और कभी यहाँ पे ऐसा वक्त नहीं आता जिसके अंदर यहाँ का तवाफ ना हो रहा हो। अल्लाह अकबर। और मस्जिद के आदाब भी हमने सीखे हैं, इन पर हमने इंशाल्लाह अमल भी करना है और इनको अपने बच्चों को भी सिखाना है। आज भी हम इसी की कंटिन्यूएशन देखते हैं, कुछ और बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। देखें, हमने शुरू के अंदर सूरतुल बकारा में शुरू में ही हमने देखा था कि तीन ग्रोह हैं, एक तो कुफर करने वाला है, एक वो है जो मुत्तकीन का है, एक वो है जो मुनाफिकीन का है। तो अल्लाह ताला ने हमें उसके बाद फेलियर्स भी दिखा दिए बनी इसराइल की फॉर्म में, और रोल मॉडल्स भी दिखा दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की फॉर्म में। तो कौन से वो लोग होते हैं जो चुने हुए लोग होते हैं, और कौन से लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देता है। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला उनको मकाम देता है लेकिन वो अपने अमल की वजह से उस मकाम से गिर जाते हैं, वो बनी इसराइल थे। तो एग्जाम्पल्स भी आपके सामने आ गई, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल आ गई कि अल्लाह ताला ने जब उनको मकामे शर्फ दिया और उनसे गलती हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने कैसे रेक्टिफाई किया अपनी गलती को, तौबा करके और फिर वापस अल्लाह ताला के हाँ अपना मकाम हासिल कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। क्या मकाम पा लेना ही काफ़ी है या उसके बाद कुछ करना भी होता है? और मकाम से इंसान गिर जाए तो उसके बाद कैसे वापस अल्लाह ताला की नज़रों में जज जाना, उसका क्या तरीका है? और कौन से वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला फिर चुन लिया करता है, और किस बेस पे चुनता है, और कितनी बड़ी उनकी यानी कुर्बानियां होती हैं, और आजमाइशें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, और फिर इसके बावजूद वो डरते ही रहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बस कबूल कर लेना। और सीखने की उनको कितनी हिर्स है, इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच के भी कहते हैं वह अरिना मना सिकना, हमारे हमें सिखा दे अल्लाह, हमें दिखा दे अल्लाह मनासिक। और अब आज देखते हैं क्या बात है। वह वसा बिहा इब्राहीम बनी ही व याकूब, और वसीयत की साथ इसके यानी इसी की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और याकूब अलैहिस्सलाम ने। देखिए दोनों पे पेश है ना, इब्राहिम ने भी की और याकूब ने भी की। किसको की? बनी, अपने बेटों को। किस चीज की वसीयत की? साथ इसके मतलब क्या, पीछे क्या बात आ रही है कि इस्लाम ले आओ। जब पहले है ना रब्बू अस्लिम कौल असलम तो रब्बिल आलम, कि सरे तस्लीम खम कर दो, झुक जाओ, सरेंडर करो, अपनी अपनी विल को सबमिट कर दो। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को राइट ऑफ चॉइस दिया है, वो बात माने या ना माने, है ना, वो झुके या ना झुके, फरमाबरदार बने या ना बने। फमन शा अफल युमिन वमन शा अफल यकफुर, जो चाहे तुम में से ईमान ले आ, जो चाहे कुफर करें। और यही तो इंसान का इम्तिहान है, किसी और को ये राइट ऑफ चॉइस नहीं मिला, ये फ्रीडम नहीं मिली कि वो कह सके कि अल्लाह मैंने नहीं मानना। सूरज को नहीं मिली, चांद को नहीं मिली, आसमान को नहीं मिली, ये पहाड़ों को, दरख्तों को, इनको नहीं मिली। सिर्फ दो मखलूकात ऐसी हैं, दो क्रिएशंस ऐसी हैं अल्लाह ताला की जिनको ये राइट ऑफ चॉइस मिला, जिनको ये फ्रीडम मिली, ये आजादी मिली कि वो चाहें तो अमल करें, चाहें तो ना करें। और इसकी बेस पे ही उनकी जजा और सजा है, कयामत के दिन उनको इनाम मिलना है या सजा मिलनी है, वो इसी की बेस पे तो है ये फ्रीडम, इस फ्रीडम की वजह से। वो फ्रीडम क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला ने आजादी दे दी कि वो चाहे तो अल्लाह ताला के आगे झुक जाए, चाहे तो अल्लाह ताला का फरमाबरदार बन जाए, चाहे तो ईमान ले आए, और चाहे तो कह दे कि मैंने नहीं लाना, कुफर करे, ना शुक्री करे, ना फरमानी करे। ठीक है, और ये ना समझे कि मुझे आजादी मिली हुई है तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे तो कभी किसका पूछा नहीं जाएगा। जिसको आजादी दी जाए फिर उससे पूछा भी जाएगा, और जिन और इंसान ये दो हैं मखलूकात जिनका सवाल और जवाब कयामत के दिन होना है। ठीक है, तो ये जो राइट ऑफ चॉइस है इसको वापस दे देना और कहना कि ए अल्लाह तू तूने मुझे राइट ऑफ चॉइस दिया है, मगर मैंने अपनी मर्जी से सबमिट कर दिया, अपनी मर्जी से इसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं वो ही करना चाहता हूं जिसमें तेरी रजा है। तो यानी ये नहीं कि मैं नाफरमानी करूं या फरमाबरदारी करूं तो ये मेरी मर्जी है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगा। नहीं अल्लाह, जो तू चाहेगा वो होगा। तो फिर तो मैंने अपना राइट ही दे दिया ना, अपने आप को खुद ही कैद कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि अब वो होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मैंने ये आजादी का अपना जो चॉइस थी उसको छोड़ दिया, अपनी फ्री विल से। ये है जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है। तो ठीक है, मैंने तुम्हें दी है आजादी दी है, मगर चाहता वो तुमसे क्या है कि इसी में तो इम्तिहान है कि तुम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, ये भी नहीं कि ना खुशी के साथ, अपनी खुशी के साथ तुम कह दो कि अल्लाह होगा तो वही जो तू चाहेगा, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अल्लाह मर्जी तो जो वो ही है जो तेरी मर्जी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें ऐसा कहने वाला बना देना कि हम तेरी मर्जी को अपनी मर्जी बना लें। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हर एक इंसान के पास ये चॉइस है, उनके पास भी चॉइस थी। वो कह देते कि मैं आग में जलने से तो बेहतर है मैं ये कह देता हूं कि मैं नहीं मानता, लेकिन नहीं, वतन छोड़ने से बेहतर है कि मैं कह दूं कि आपकी बात मुझे कबूल है, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा किया। हमारे पास देखिए कितनी दफा चॉइसेस हैं। मेरे पास चॉइस है ना, नमाज पढूं ना पढूं, चॉइस है हलाल खाऊं या हराम खाऊं, चॉइस है कि बदअखलाकी करूं या अखलाक से पेश आऊं, चॉइस है कि हिजाब लूं या ना लूं, चॉइस है मेरे पास कि मैं अपनी जो ऊपर मेरे जिम्मेदारियां हैं अल्लाह ताला ने डाली, जो दूसरों के हकूक है मेरे ऊपर, उनको पूरा करूं या ना करूं। ये सारी मेरे पास चॉइसेस है ना, वालदैन का ख्याल करूं या ना करूं, सब चॉइसेस है। कोई भी किसी दिन उठ के कह सकता है मैंने नहीं करना, ठीक है कोई मसला नहीं, तुमने ये कह दिया अभी तो कोई मसला नहीं, लेकिन आगे इसकी पूछूंगी। ये है जो फ्रीडम ऑफ चॉइस का खौफ था कि आसमानों जमीन ने कहा हम नहीं ये चाहते, हमें ना फ्रीडम दी जाए। इंसान ने अपने ऊपर ये लिया कि मुझे जन्नत मिलेगी इसके बदले में, अगर मैं अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चला तो ठीक है। वो इसीलिए उनके लिए जन्नत जहन्नुम है ही नहीं, उन्होंने ये फ्रीडम ली नहीं। लेकिन इंसान के पास फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं कि वो आपे से बाहर हो जाए, वो अल्लाह ताला उसे ये चाहता है कि तुम सबमिट कर दो। और इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने आप से फाइट करना पड़ता है, क्योंकि अपना नफ्स कहता है नहीं मैंने नहीं करना, जिद करता है, उकसाता है। फिर शैतान भी बाहर है, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि जन्नत में कोई जाए, वो कहता है मैं भी जहन्नुम में जा रहा हूँ, ये भी मेरे पीछे जाए, ये मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। सूरह आराफ में आप पढ़ लीजिएगा, नमाज है, रोजा है, हलाल खाना है, या अल्लाह ताला की कोई भी फरमाबरदारी है, हकूक अदा करने हैं, ये सारी चीजों के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर फिर देखें मकाम उन्हीं को मिलेगा जो इस स्ट्रगल में विन करेंगे इस तरह से कि बस ए अल्लाह मैंने सबमिट कर दिया, मेरी तो अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, हालांकि तूने मुझे ये हक दिया है और तूने मुझे ये राइट दिया है और तूने मुझे आजादी दी है, मैंने खुद ही वो आजादी गिव अप कर दी क्योंकि मैं तेरी गुलामी करना चाहता हूं, खुद को अपनी मर्जी से अल्लाह की गुलामी में ले आए, वो है जो अल्लाह ताला का प्यारा बनता है। इस तरह इंसान चुना जाता है, ऐसे नहीं कि मर्जियां भी हमने अपनी करनी है, मानना भी कुछ नहीं है और चुने भी हम जाए। और ये देख लें एग्जाम्पल, काला असलमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं बस फरमा बरदार बन गया रब्बिल आलमीन का। हमसे तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बच्चा ही कह देना मैंने नहीं मानना आपकी बात को, और इससे भी बढ़ के हमारा कोई नौकर जिसको हम करती हैं, जिस जो हमारी अब बकौल हमारे हमारी दिए हुए पे, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना कभी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे यहाँ ये बोला जाता है ना, हमारे टुकड़ों पे पला है ऐसे कहा जाता है ना, जिसको हम सोचते हैं हमारे टुकड़ों पे पला है, हालांकि कोई किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता, अल्लाह ताला के ही दिए हुए टुकड़ों पे पलता है, लेकिन हम इतना राइट समझते हैं कि इसकी मिजाल है कि ये मेरे सामने बोले। सोचें कि किसी को आपने बहुत बहुत पैम्पर किया, बहुत कुछ आपके थ्रू उसको फायदा मिला, और वो एक दिन आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कहे कि नहीं आप तो ये सही नहीं कह रहे और मैंने तो अपनी मर्जी करनी है, आपको क्या लगेगा? लेकिन इंसान को देखें ये कितना नाशुक्रा है कि हर दिन ऐसा ही कहता है, मुंह से ना भी कहें अमल से कहता है, मैंने करनी तो अपनी मर्जी है, मैंने नहीं मानना, ये अपने अमल से वो ये कर रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, अल्लाह की नहीं माननी, मैंने तो अपनी ही माननी है जो मेरा दिल करता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की, कौन थे उनके बेटे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम तो थे ही, कहा जाता है इनकी एक और तीसरी बीवी भी थी, मैंने आपको बताया कतूरा उनका नाम था, उनके से भी उनके बेटे थे, तो अपने बेटों से उन्होंने भी फरमाया। और याकूब अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे थे आपको अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी पता हो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और जो उनके भाई थे ये किसके बेटे थे, याकूब अलैहिस्सलाम के। और याकूब अलैहिस्सलाम के फादर का नाम क्या है, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके फादर का नाम क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसका मतलब दादा ने भी यही वसीयत की और पोते ने भी यही वसीयत की, और जो बीच में थे उन्होंने भी जाहिर है ऐसे ही कहा होगा अपने बच्चों को। और क्या ये सिर्फ वसीयत उनके लिए है या रहती दुनिया तक हर एक के लिए, इसका मतलब अल्लाह ताला रहती दुनिया तक इस वसीयत को इंसानियत के लिए एक पैगाम बना रहे हैं कुरान में इसको रख के, कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो वसीयत जिसको कि उन्होंने किया कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसको दर्ज फरमा दिया, अल्लाह ताला ने कुरान की जीनत बना दिया इसको, तो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती होगी ना, ये कोई आम बात नहीं होगी, इसका मतलब है। और इसका मतलब यही मैसेज हमारे लिए भी है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ये उसवा है, ये रोल मॉडल है तुम्हारे लिए, तो रोल मॉडल को कॉपी किया जाता है, तो इनने जो किया वो ही वैसे ही हमने भी करना है। और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो खाते क्या थे, पीते क्या थे, क्या करते थे, नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट उनकी जो जिंदगी की बात थी कुरान के अंदर, वही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसे फालतू बातें नहीं है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे और आपको समझनी है कि बच्चों को क्या नसीहत करनी है हमने। अच्छा अब आगे देखें नसीहत उनकी, या बनिया, एक एक बात पे गौर किया करें, वो कैसे मुखातिब करते हैं अपने बच्चों को, दोनों ने किस तरह से मुखातिब किया, ए मेरे बेटो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शफकत है, मोहब्बत है, ये नहीं ओ फलां इधर आओ। अच्छा देखें इससे हमें पता चला कि जब दीन की बात बतानी हो ना एक्स्ट्रा शफकत से बात करें, ठीक है, एक्स्ट्रा उनको साथ इज्जत से बात करें। अच्छा हमारा अक्सर मसला ये होता है कि वैसे हम बच्चों से अच्छी तरह भी बात कर रहे होंगे, लेकिन जो ही हमने कोई दीन की नसीहत करनी है ना, चलो नमाज पढ़ो, उठते नहीं हो तुम, डांट के बात करते हैं, और नमाज का तुम्हें कोई होश है, नमाज पढ़ने का भी पता है, भी सिर्फ आम बातों में ही कह रही हूं कि जो रोजमर्रा की होती उसके अंदर हमारा तरीका ये है नसीहत करने का, जबकि वो कैसे नसीहत करते, या बनिया, इसका मतलब है किसी को भी आप दीन की बात बताएं तो आपके लहजे में भी आपके वर्ड्स के चुनाव में भी बहुत केयरफुल होना है आपको। आप देखें अंबिया की जब आप किससे आगे पढ़ेंगे तो वो अपनी कौमों को भी जब दावत देते हैं तो या कौमी कहते हैं, और यहां से पता चला अपने घर वालों को भी जब दावत देते हैं, अपने बच्चों से भी बात करते हैं, तो या बनी या। अब देखें ये नहीं कि सिर्फ बाहर वालों से, अच्छा हम बाज दफा बाहर वालों से तो अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो हम समझते हैं कि इनके साथ तो जैसे मर्जी करें, उनको तो एक लगा के इनको कान पकड़ के ही फिर उसके बाद उनको बात सुनानी है ताकि सही तरह सुने। हालांकि ये चीजें एक बुरा तासुर छोड़ती हैं, सारी जिंदगी उसको बच्चे को फिर याद रहता है कि मेरे कान मरोड़े जाते थे नमाज के लिए, मुझे जब ये कहा जाता था तो मुझे मारा जाता था, मुझे ऐसे किया जाता था। तो ऐसे ना करें, तो ये उल्टा असर करेगा। किसने कहा? उनके बच्चों ने कहा कि आप जब बाहर वालों के साथ बात करती हैं तो कितनी मोहब्बत से करती हैं फोन पे, और उसके बाद हमसे बात करती तो तब तो ऐसे नहीं करती। तो इसका मतलब हमारा जो दीन पहुंचाने का बाहर वालों के लिए क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है और घर वालों के लिए डिफरेंट है, जबकि हम अंबिया की जिंदगी से देखते हैं घर वालों के साथ भी उन्होंने किस तरह से बात की, और कितने बड़े बड़े पैगंबरों ने ऐसा किया। दूसरी बात हमें यह पता चली कि उन्होंने अपने घर वालों की फिक्र की है, फिक्र किया उन्होंने ना, जब भी तो अपने बच्चों को बता रहे। अगर हम सारी दुनिया में दर्स देते फिर रहे हैं अगर हमें अपने बच्चों की नहीं फिक्र है, तो पहली तवज्जो तो अपने घर में होनी चाहिए। इस्तफा क्या है? चुन लिया जाना। तो उन्होंने क्या फरमाया? बेशक ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन, तुम्हारे लिए दीन अल्लाह ताला ने चुना है। यानी कौन सा दीन है? वो दीन इस्लाम है। वो आगे पता चल रहा है ना, मान तो मुस्लिमून से तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया। अच्छा अब ये दीन चुना गया, इसकी दलील क्या कुरान पाक में आपको मिलती है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, यानी दीन अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही है। और व मैं यबतगी गैर अल इस्लाम दीनन वलन युकबला मिन्हु, जो इस्लाम के सिवा कोई दीन लेकर आया कयामत के दिन तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो ये सूरह आले इमरान में है, सूरह आले इमरान में ये या लतीना अमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला वान्तुम मुस्लिमुन, जो यहाँ पे भी है फला तमूतुन्ना इल्ला वान्तुम मुस्लिमुन, वहां पे ईमान वालों सबको कहा गया, यहाँ पे इनकी नसीहत बता के ये बताया गया कि जेनरेशंस पीछे चले जाएं आप, जमाने हजारों साल गुजर गए हैं। वो डायलॉग जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने बोला था, वो उस वक्त तो कोई भी नहीं और तीसरा सुन रहा होगा, उनके बेटे सुन रहे थे या वो, लेकिन अल्लाह ताला सुनने वाला था, वो जानने वाला था। उसने इस कुरान में हमें बताने के लिए, समझाने के लिए इसको शामिल किया। बाज दफा इंसान सोचता है ना, लोगों को पता चल जाए मैं क्या कर रही हूं, बस किसी की तरह पता चल जाए कि हम कितने अच्छे और कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला को पता चल गया तो वो काफी है, वो चाहेगा तो वो औरों तक पहुंचा देगा आपकी बात को। तो उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने अद्दीन, अद्दीन का मतलब अलिफ लाम लग गया ना, कोई खास दीन है ये नहीं कि कोई भी दीन। देखिए दुनिया में हर एक ही कहता है हमारा दीन बड़ा अच्छा, बड़ा खालिस, आ जाओ हमारे दीन की तरफ। देखा हमने आगे पढ़ा, आगे पढ़ेंगे ना हम, कि यहूदी और नसरानी कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, जिसका जो दीन है वो कहता है जी हम ही ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो दीन चुना है ना, वो दीन है जो असल दीन है, वो जिद दीन है जो सही दीन है। ये नहीं कि रैंडमली किसी दीन की तरफ भी चल पड़ो। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना सारे ही ठीक हैं भाई, एक ही वो चाहते हैं कि अलग अलग ना किया जाए ताकि हमारी कोई डिस्टिंक्शन ना हो। हम तो कितने अच्छे लोग हैं कि हम तो सारे ही अधियान को ठीक मानते हैं, वो अपनी तरफ से इसको बहुत फखर से कहते हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि जब हम ये कहेंगे तो हम ब्लेंड इन हो जाएंगे दूसरों के साथ। और ये कितनी अच्छी बात है क्योंकि हम दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान कितने ज्यादा यानी दूसरों का ख्याल करने वाले होते हैं। ये चीज नहीं है जिसके अंदर आप ये कह दें कि सारे ही ठीक हैं, तब तो आपने निगेट ही कर दिया इस्लाम को, क्योंकि आपका जो कलमा है वो तो स्टार्ट ही ला इलाहा से होता है। आपने तो सबको पहले निगेट करना है तो फिर ही अपने को मानना है, वरना तो आपका तो कलमा ही पूरा नहीं होता। अगर आपने निगेट नहीं किया, नफी नहीं की सबकी, तो जरूरी है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जो दीन चुना है उसी के ऊपर तुम रहो। अच्छा, अब आप सोचेंगे दीन इस्लाम तो बहुत बाद में आया, ये तो बहुत पहले के गुजर चुके हैं पैगंबर। तो बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अंबिया का दीन एक ही था, शरीयतें फर्क फर्क थी आगे, यानी शरीयत में फर्क था। मिसाल के तौर पे पिछले पैगंबरों की शरीयत में कोई चीज मसलन है कि दो बहनों से शादी करना अलाउड हो, हमारी शरीयत में नहीं है। इस तरह और कुछ चीजें फिकही मसाइल यानी आगे वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो बेस है ना, बुनियाद है, तौहीद है, वो सब में सेम थी, वो है इस्लाम। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में सूरह आले इमरान में तो साफ ही इन दीन आइंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक तो दीन इस्लाम ही है बस। अब जब ये दीन इस्लाम आ गया तो अब तो कोई भी आगे दीन नहीं है जो कि अल्लाह ताला एक्सेप्ट करे, मगर पिछलों के अंदर भी यही था दीन, यानी ये बेस शरीयतें उनकी मुख्तलिफ थी, कोई मसला नहीं, वो अपने अपने जमाने में जिस शरीयत पे भी चले, जो भी लॉज थे उनके, मसलन किसी में किसास है, किसी में अब फितिया है, या किसी में रोजे इस तरह से रखने हैं कि भाई उसके बाद इफ्तारी ही नहीं है, अब एक सहरी है, 24 घंटे का रोजा है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें वो सब की सेम थी, और खास तौर पे तौहीद वो सब में सेम थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को ये नसीहत की, और वसीयत क्या होता है, ताकीदी हुक्म। देखिए, एक आम नसीहत होती है ना, और एक इंसान मरते वक्त एक वसीयत करता है, वो ताकीद के साथ होती है, और लोग याद भी करते हैं हमारे वालदे ने हमें ये वसीयत की थी, ये उनकी वसीयत है। औलाद कितनी इस चीज को अहमियत देती है। तो यहां से हमें ये पता चला कि वसीयत सिर्फ माल की नहीं होती, वसीयत उसकी भी होती है कि आगे आपने कैसे रहना है, दीन की भी होती है, या कोई भी और चीज जो आपको बहुत अहम लगती है। मसलन आप बच्चों को ये कह जा सकते हैं कि नमाज ना छोड़ना, या तुम सिला रहमी करते रहना। अच्छा, हमारी वसीयतें उलट ही होती हैं आजकल, देखिए आप लोग क्या वसीयत करते हैं। ठीक है, माल की आप वसीयत करें, पहले से ही करनी चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे। अच्छा, फलां को इतना देना, मेरे कपड़े उसको दे देना, मेरा जेवर फलाने को दे देना, जो कि जायज वसीयतें ही नहीं है, मेरे उसको ये देना, और मेरा कारोबार पीछे फलां संभाले। अच्छा, दीन की नसीहत करना उस वक्त वसीयत जिसको कहते हैं डेथ बेड पे, वो नहीं हमारे उसके अंदर होती। तो उन्होंने डेथ बेड पे ये बातें कही थी, या उनकी वसीयत ये थी, ये ताकीदी हुक्म था कि फला तमूतुन्ना, हरगिज ना तुम मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान मुस्लिम हो, इसका मतलब ये टर्मिनोलॉजी उस वक्त भी थी। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि इस्लाम तो उस वक्त भी था, आदम अलैहि सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब इस्लाम के ऊपर ही थे। बट तो बाद में इन्होंने अपने नाम यहूदी, ईसाई, ये निसरानी, ये बाद में रखे हैं। ये थी उनकी वसीयत अपनी औलाद को। अच्छा, फिर कुछ तो बिल्कुल ही उल्टी वसीयतें करते हैं, जाहिर हर एक को जिसको जो चीज को अहमियत देता है वो उसी की वसीयत करेगा। कुछ तो अपने बच्चों को क्या वसीयत कर जाते हैं, फुप्पी से कभी बात ना करें, इसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, अपनी दादी को ना पूछना, अपने फलाम के साथ ना मिलना, देखना उसके साथ बात नहीं करनी तुमने, वरना मैं तुझे अपना दूध ना बख्शूंगी। ये कोई वसीयतें करने वाली, तोड़ के जाना अपनी औलाद को रिश्तेदारों से। तो ये तो गुनाह की वसीयत है। कोई कह देता मेरी बहू ना मेरे पास आए, इसने जिंदगी में मुझे नहीं देखा तो अब क्या, ये मेरा मुंह ना देखे, फलाना देखे, इस तरह की वसीयतें नहीं करनी चाहिए। बल्कि वसीयत नेकी की, भलाई की करें, क्योंकि वो वसीयत भी जो है ना आपके लिए सदका जारिया बन सकती। देखिए ये उनका सदका जारिया बन गई ना, कि वो उन्होंने, ये नहीं कि उनके बच्चे थे नहीं दीन पे और उनके बच्चे कोई मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जब इंसान वसीयत करता है तो वो औलाद को ज्यादा याद रह जाती है कि ये मेरे माँ बाप ने मुझे एक बात कही थी, तो रीइन्फोर्समेंट हो जाती है। ठीक है, रीइन्फोर्स हो जाता है, जोर किस पे दिया उन्होंने कि ये तुम इस हाल में, तुम्हें मौत आए कि तुम मुस्लिम ही हो। जब ऐसी वसीयत होगी तो बच्चे इसको याद रखेंगे कि जाते जाते मेरे बाप ने मुझे ये बात कही थी। और इंसान भी बरीउ जिम्मा हो जाता है कि मैंने अपनी औलाद को ये कह दिया था, या अल्लाह मैंने तो इनको समझाया था। आप क्या सोचते हैं कि ये वसीयत क्या वो मरते वक्त ही कर रहे थे, या इससे पहले भी की होगी उन्होंने? मैंने आपको बताया कि वसीयत इंसान उसी चीज की करता है जो उसके दिमाग पे सवार होती है। जाहिर है मरते वक्त अब इंसान के लिए जो चीज अहम होगी ना वो उसी का, कोई काम कारोबार का कहता है ठीक है, बुरी नहीं है वो नसीहतें, वो वसीयत भी करनी चाहिए ऐसी चीजों की भी। कोई आपको अहम चीज है कि भाई फलां का ख्याल रखना, अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखना, अपने फलां रिश्तेदार का ख्याल, ठीक है आप रखें, लेकिन सबसे अहम चीज को हम भूल ना जाए कहीं, कि दीन की वसीयत करना। इस वसीयत को हमेशा याद रखें, क्योंकि आप खुद भी बरी जिम्मा हो गए, आपके लिए सदका जारिया भी बन गई अगर बच्चों ने वो की, और दूसरे ये कि ये ही बताता है कि आपके जहन पे क्या चीज सवार थी सारी जिंदगी। इन पैगंबरों ने सारी जिंदगी औलाद के लिए कोशिश की कि वो दीन के ऊपर चलें, और आखिर वक्त में भी यही नसीहत उनको कर रहे हैं, और ये बहुत अहम नसीहत है। क्योंकि इंसान के लिए उसके इस दीन की वजह से ही मकाम और मर्तबा है आखरत में, और दीन के खराबी होने की वजह से जहन्नुम है। सारा कुछ दीन पे डिपेंड करता है ना कयामत के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसको इस्लाम की तरफ हिदायत मिल गई, और उसकी रोजी रोजी उसकी बकदरे जरूरत है उसके पास जिसपे वो कनात करता है, यानी उसके लिए खुशखबरी है, वो तो बड़ा खुशबख्त है वो इंसान जिसको इस्लाम की तरफ हिदायत मिल गई। तो इस्लाम पे होना और इस्लाम पे मौत आना ये बड़ी शहादत की बात है, क्योंकि जिसको इस्लाम के पर मौत आती है वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, चाहे सजा भुगत के हो। और हमें यहां से पता चलता है मौत की क्यों बात की। ये भी कहा जा सकता था कि तुम इस्लाम पे ही रहना, नहीं मौत तुम्हें आए इसके ऊपर क्यों, इसका इससे हमें ये बात समझ आती है कि इन्नमल आमालु बिल खवातीन, आमाल का दारो बदार उनके खात्मे पे है, एंड पे है, कि एंड किसका किस पे हुआ, क्या किसी का एंड बुराई के ऊपर हुआ या भलाई पे हुआ। इसीलिए इंसान को हमेशा अपने लिए हुस्ने खात्मा की दुआ करनी चाहिए, एंड जो मेरा हो या अल्लाह ताला वो ऐसी किसी नेकी के काम के अंदर हो, अल्लाह ना करे कि किसी बुराई में ना पड़ा हो, कोई कोई शराब पी रहा होता और उसके अंदर ही उसको मौत आ जाती है, कोई सिनेमा घर में बैठा हुआ उसमें उसको मौत आ गई, कोई किसी क्लब में नाच रहा उसमें उसको मौत आ गई, कोई किसी शादी के ऊपर लोगों को अपना नाच दिखा रहा है उसमें उसको मौत आ गई, किसी के पेट में हराम लुकमा है उसमें उसको मौत आ गई। तो मौत तो किसी भी हालत में आ सकती है। जो याद रखें, जो इंसान अपनी जिंदगी में कर रहा होता है जाहिर है उसके ऊपर ही मौत आई। जैसे किसी ने फरमाया कि जिस पे जिंदगी होती है उसी पे उसको मौत आती है, यानी जिस पे आपकी जिंदगी गुजर रही है। अगर आपकी जिंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजर रही है, 24/7 आप उसके फरमाबरदार बने हुए, जाहिर है फिर मौत भी जिस दिन आएगी तो फरमाबरदार ही होंगे। और अगर खुदा ना खासा नाफरमानी में और ज्यादा वक्त नाफरमानी में गुजर रहा है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अचानक से जब मौत आने लगेगी आप एकदम फरमाबरदार हो गए और बस उसी के हाल में दुनिया से गए, उसके बहुत कम चांसेस है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मौत इस हाल में आए कि हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो, मुस्लिम कौन होता है फरमाबरदार, सबमिट कर देने वाला, ये हमने पहले भी बात की थी, वो जो अपनी विल सबमिट कर दे, जो अल्लाह ताला के आगे झुक जाए, सरेंडर किया हुआ, उस हालत में अगर चाहते हैं कि मौत आए कि मैं अल्लाह ताला का फरमा बरदार हूं, तो फिर फरमा बरदारी के लिए वेट नहीं करने की जरूरत कि मौत आएगी तो फरमा बरदार बन जाऊंगा, बुढ़ापा आएगा दुनिया से जाने से पहले बन ही जाऊंगा, नहीं फिर आज बने, क्योंकि मौत का तो वक्त पता नहीं है। देखिए मुसलमान अपने आप को कहलाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, यहाँ पे वो मुसलमान मुराद नहीं जो मुंह से जुबान से बस अपने आप को मुसलमान कहते हो या अपने रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखते हो, ये कौन से मुसलमान हैं जो फरमा बरदार हैं। तो फिर कितना जरूरी है कि फरमा बरदारी की हालत में मौत आए ताकि उसी हाल में उठाए जाए, कयामत के दिन इंसान उसी हाल में उठेगा जिसमें उसको मौत आई होगी। इसीलिए तो जो तलबिया कहता हुआ जो शहीद हो गया, उसने एहराम पहना हुआ था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार लगा रहा था, इसी हाल में उसको मौत आ गई, तो कयामत के दिन उठेगा तो लब्बैक ही पढ़ रहा होगा। और जो गालियां देता हुआ दुनिया से गया, जो बुरा भला कहता हुआ गया, जो पता नहीं क्या क्या बोलता हुआ गया, उसी हाल में वो उठेगा। तो फिर क्या चाहते हैं, ख्वाहिश तो हमारी यही है कि अल्लाह कुरान पढ़ते हुए मौत आए, या अल्लाह सदे में मौत आए, या अल्लाह फरमा बरदारी में मौत आए, लेकिन फरमा बरदारी है कितनी फिर जिंदगी में, ये देखने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। और फिर एक और बात यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे सिर्फ इस्लाम का लबादा ओढ़ लेना, एक कोई कवरिंग है इस्लाम की वो पहन लेना और फिर बस जब दिल किया उतार लेना, वो नहीं है, बल्कि इस्लाम को अपनी जिंदगियों में ले आना, इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेना, या ये कहें हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं, ये है जरूरी। इस्लाम को नहीं तरोड़ना मरोड़ना कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाए, मुस्लिम वो ही है जो अल्लाह ताला की मर्जी के आगे सबमिट करता है, वो नहीं है जो अपनी मर्जियां करता है। एक और बात इसमें समझ आई कि इस्लाम में से होना कितनी बड़ी फजीलत की बात है, ये छोटी बात नहीं है। सही वाला इस्लाम कह रही हूं, ये वाला नहीं जो जुबानी कलामी है, वो नहीं, फरमा बरदारी वाला इस्लाम कि इंसान की हर वक्त कोशिश हो अल्लाह की फरमा बरदारी में ही रहूं, एक लम्हा भी मुझसे नाफरमानी ना हो, उसमें रहना कितनी बड़ी सआदत है। इतनी बड़ी सआदत है कि पैगंबर भी उसकी वसीयत कर रहे हैं। तो फिर ये सआदत अपने लिए इसको ऑनर समझना ये जरूरी है, ये नहीं कि आप छुपे इससे कि कोई पहचान ना ले मुझे कि मैं मुसलमान, फिर तो आपने ऑनर समझा ही नहीं इसको। आए मैं अपना नाम भी ऐसा ना हो कि लोगों को पता चले कि मुसलमान है, मेरा मेरी ड्रेसिंग भी ऐसा ना हो कि लोगों को पता चले कि मुसलमान है, मेरी किसी बात से मत ना पता चल जाए, सलाम भी नहीं बाज लोग करते, हेलो हाई करते, क्योंकि अगर सलाम किया तो हम तो बैकवर्ड से नजर आएंगे, तो हेलो हाय, मुसलमानों को भी हेलो हाय कहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है हेलो हाय करना, और सलाम करना तो ये तो मौलवियों टाइप का काम है, ये तो बैकवर्ड सा काम है, वो इसको ये समझते हैं। तो मुस्लिम वो नहीं है, मुस्लिम वो है जिसको अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी पे फखर हो, उसको ये ऑनर लगे, ये बैज ऑफ ऑनर है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद और तमाम अंबिया का जो दीन है, मैं तो इसको बैज ऑफ ऑनर समझूं कि अल्लाह ताला मुझे भी इनमें शामिल कर ले कि मैं मुस्लिम हूं। आपको पता है ना वो दुआ जो हम सुबह और शाम की दुआओं में ये पढ़ते हैं, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, कि मैं राजी हूं इस्लाम के दीन होने पे। आप राजी भी हैं? राजी हैं आप इस पे? खुश हैं आप इसमें? मुतमईन हैं? जो मुतमईन होगा और इस पे खुश होगा और इसको बैज ऑफ ऑनर समझेगा, वो इसको छुपाएगा नहीं, वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी छुप जाए, मेरा किसी को पता ना चले, मेरी पहचान कहीं मुसलमान के तौर पे ना हो। इतना डरते हैं इस बात से, डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए कहीं, कहीं मुझे एयरपोर्ट पे खड़ा ना किया जाए, कहीं मुझे ऐसा ना कोई घूर के देख ले, लिहाजा ऐसे गुरगो के पता ही ना चले कि इस्लाम है, कुछ और ही अपने ऊपर रंग चढ़ा लो। आगे बात आएगी रंग की भी, तो कैसा रहना चाहती है? बहुत कुछ सिखाती है, एक आयत ही बहुत कुछ सिखा देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और तुम्हें मौत ना आए इस मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। निकाह के खुतबे में भी ये आयत पढ़ी जाती है, इस हाल में तुम्हें मौत आनी चाहिए, जैसी जिंदगी होगी वैसी मौत होगी, और जैसी मौत होगी वैसे ही उठाए जाओगे। तो क्या चाहते हो फिर? क्या चाहते हो? मौत किस हाल में हो वैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, चूज करो फिर उस लाइफ स्टाइल को जैसी जिसमें आप मरना चाहते हैं। जब ऐसी किसी मजलिस में हो जो अल्लाह की नाफरमानी की है, तो होश किया करो कि यहां पे अगर मौत आ गई तो क्या होगा। जब किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जहां पे आप नहीं चाहते कि मुझे मौत आ जाए, तो वहां पे मत जाओ, उसमें शामिल मत हो। कोई ऐसा गुनाह जिसमें आप नहीं चाहते कि मुझे इस गुनाह को करते हुए मौत आ जाए, उस गुनाह को छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता ना किस लम्हे आ जाए, और कल पे ना टालो अपनी तौबा को, क्योंकि हम नहीं मरना चाहते इस हाल में कि हमने तौबा ही ना की हो। तो जो कल करना है वो आज कर लो, क्योंकि हम मरना फिर इस हाल में चाहते, उस काम को करके हम मरना चाहते ना, तो फिर आज कर लो, कल का इंतजार ना करो। दिन है तो रात का इंतजार ना करो, जवानी है तो बुढ़ापे का इंतजार ना करो। आज आफियत है तो आफियत के चले जाने का इंतजार ना करो, वो तब होगा तो तब करेंगे, तो ऐसा होगा तो वैसा करेंगे। आज मौका है तो मौके के छिन जाने का इंतजार ना करो, मौका छिन जाएगा फिर पछताओगे। तो फला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून, अल्लाह हमें मौत ना देना मगर इस हाल में कि हम मुस्लिम हो। ये दुआ करें, साथ साथ दुआएं हम करते जाएं ना, जब हमने पारा शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था ना, साथ साथ दिल ही दिल में दुआएं मांगते जाया करें। जब रब्बाना तकबल मिन्ना की बात आई, दुआ कर लिया करें, अल्लाह मुझसे भी कबूल कर लेना मेरी नेकियां, छोटी छोटी हैं लेकिन अल्लाह उनको कबूल कर लेना। अम कुंतुम शुहादा, क्या तुम थे हाजिर किस वक्त? इज हादरा याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम को पर मौत आ रही थी तुम उस वक्त हाजिर थे। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि यहूदियों को जब इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने कहा हमारे तो बाप बाप ही पीछे बाप, इसलिए क्योंकि आबाओ अजदाद हमारे याकूब अलैहिस्सलाम का ही लकब है ना इसराइल, तो उन्होंने तो हमें वसीयत की थी कि तुम यहूदी रहना, हालांकि ये झूठ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम उस वक्त क्या खड़े हुए थे जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आ रही थी, कि उन्होंने क्या कहा है? तुम तो थे ही नहीं उस वक्त, लेकिन अल्लाह तो ताला तो था ना, वो बता रहा है कि उन्होंने तो क्या कहा था उस वक्त। और तुम कह रहे हो वो कह के गए थे यहूदी होके रहना, हमेशा यहूदियत को ना छोड़ना। तो जब उनके ऊपर मौत आई, इसका मतलब है कि वो डेथ बेड पे थे, तो क्या कह रहे थे? इस कॉल अली बनी ही जब उन्होंने कहा अपने बेटों से, अब देखिए वो ही उनके 12 बेटे जिनमें यूसुफ अलैहि सलाम भी हैं, बिन्यामीन भी है। अब ये उनको कहाँ मौत आ रही? मिस्र में, क्योंकि देख आपको पता है कि यूसुफ अलैहि सलाम ने उनको मिस्र बुला लिया था अपनी सारी फैमिली को, तो अब वो मिस्र में इनको मौत आ रही। इसीलिए तो आगे बनी इसराइल मिस्र में थे ना, तो फिरौन का बादशाह, फिरौन जो बादशाह था वो मिस्र का था। तो अब वो डेथ बेड पे हैं और अपने बेटों बेटों को बुला के वो क्या नसीहत कर रहे हैं? जब इसमें आप ये भी देखें कि खुद नहीं सिर्फ चलना दीन पे, अपनी औलाद को चलाने के लिए, अपने घर वालों को चलाने के लिए कोशिश करनी, उनको अपने साथ लेकर चलना है। उन्होंने उनसे एक सवाल किया, मा ताबुदूना मिन बादी, तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? ये नहीं कि वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे एक के भाई आज उनको याद आ गया कि मैं इनसे जरा पूछूं कि ये क्या जवाब देते, नहीं, इसमें भी एक रीइन्फोर्समेंट है इस बात की, क्योंकि वो उनको हमेशा कहते रहते थे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को मुंतखब किया। तो वो कोई ऐसी नई बात जानने के लिए नहीं कर रहे कि एक बात का पता कराएं, बल्कि वो इसलिए कि इस चीज के ऊपर जोर दें। तो सवाल करने से भी क्या होता है कि दूसरे को आप जगाते हैं। एक चीज होती है कि लेक्चर दिए जाते रहे, वो उस तरह आप करके दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, लेकिन आप देखते हैं मैं आपसे बार बार बीच में भी सवाल करती रहती हूँ, उसका मकसद क्या होता है कि थोड़ा आप जागे, खुद सोचे। अगर बेध्यानी में इंसान सुन रहा था तो अब वो थोड़ा सा सवाल करने से वो एकदम अलर्ट होता है कि अच्छा क्या जवाब देना है। तो वो उनको वसीयत भी करते रहे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुना है। ये भी पीछे इब्राहिम अलैहि सलाम की और यकूब अलैहि सलाम की भी वसीयत थी। और आप पूछ भी रहे हैं बच्चों से कि तुम बताओ फिर मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कितनी तड़प है ना इसके अंदर, क्योंकि मिस्र के अंदर बुत परस्ती थी और उनको डर था कहीं ये ना हो कि ये इस तरफ को चले जाए। और देखिए जब आप अपने घर वालों को याद रखें साथ लेकर चलेंगे ना, तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी दीन के रास्ते में, क्योंकि तो आपको अपने हम ख्याल लोग मिल जाते हैं ना, आपको वो मिल जाते हैं लोग के जो आपके साथ चलने वाले होते हैं, वो और आप एक साथ ये सफर तय करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता घर वाले मुखालिफ हो गए तो फिर क्या होता है? अगर आपने 100 की स्पीड से भागना था ना, तो आप 50 की स्पीड से चलेंगे, स्पीड खुद ब खुद कम हो जाती है क्योंकि वो पीछे पुल करते। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर वालों को हम अपने साथ अपना मददगार बनाएं दीन के रास्ते में, और दुआएं भी करनी चाहिए, अल्लाह मेरे घर वालों को मेरा मुआविन बना दे, मेरा मददगार बना दे दीन के रास्ते में। और देखें उन्होंने सिर्फ दुआएं नहीं की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ आपने पीछे सुन ली थी ना, कि उन्होंने ये दुआ की थी अपनी नस्लों के लिए भी दुआ की थी कि इनमें मुस्लिमीन उठाना, उम्मत मुस्लिमतन उठाना। सिर्फ दुआ नहीं करनी, उसके आगे फिर तरबियत भी करनी है, फिर उसके आगे उनको नसीहतें भी करनी है, फिर उनके साथ लगे भी रहना है, हत्ता कि कब तक? अब लोग सवाल पूछते हैं ना, कब तक कहें, कब तक कहें? तो ये देख लें, तब तक कहें, मरते दम तक कहें, मरते दम तक। पीछे आपने देख ली उनकी भी वसीयत थी, क्या उनके बच्चे फरमाबरदार नहीं थे अल्लाह के? थे क्या याकूब अलैहि सलाम के या इब्राहिम अलैहि सलाम की औलाद से ज्यादा कौन फरमाबरदार होता है? तो इस्माइल अलैहि सलाम, इसहाक, वो तो खुद पैगंबर थे। तो थे, लेकिन फिर भी उनकी फिक्र देखें। तो फिर दुआएं जरूर करें और रो रो के करें कि या अल्लाह इनको दीन के रास्ते पे चला दे। और अगर वो नहीं भी आ रहे तब भी गिव अप ना करें। और ये तभी हो सकता है ना जब इंसान खुद मुखलिस है, खुद समझता है दीन की अहमियत को, तभी वो ये रो रो के दुआएं भी करेगा ना, जो उसने खुद ही अहमियत नहीं इसकी जानी और उसके नजदीक इस दीन की कोई ऐसी खास वैल्यू नहीं है, तो फिर वो क्या नसीहत करेगा? हम इसलिए भी तो नहीं करते कि हम अगर कहेंगे तो हमारे बच्चे आगे से हमें कहेंगे आप कौन सा खुद बहुत फरमाबरदार हैं जो हमें कह रहे हैं कि फरमाबरदारी करो, है ना? हमें अपनी गिरेबान में हम जानते हैं, हमें खुद ही होता है कि हम कैसे इनको कहें, हम खुद तो मानते नहीं अल्लाह ताला का कोई हुक्म, अब इनको कैसे बताएं? याद रखें वालदैन सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं औलाद के लिए, तो जब औलाद देखेगी ये तो खुद ही ये करती है, मेरी अम्मी ऐसे करती हैं ऐसे करती हैं, एक ना एक दिन वो कह जरूर देते हैं आप हमें नमाज का कहती हैं और खुद देखें आप ये करती हैं, आप हमें कुरान पढ़ने का कहती हैं और देखें आपने तो ऐसे वक्त में ऐसे किया है, तो उस वक्त सोच लिया करें कि ये मेरे लिए आईना है। वाकई बाज दफा हमारे बच्चे ही हमें आगे से वो चीज का बताते हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और वो सही कह रहे होते हैं उस वक्त, और बाज हम इसी वजह से उनको नहीं कहते कि आगे से सुननी पड़ेंगी। तो दुआएं भी करें, नसीहत भी करें, खुद को भी बदलें, खास तौर पे हमने जब अपने बच्चों को नसीहत करनी है तो खुद रोल मॉडल बनना है। और वो लोग जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या बच्चा जिनका पैदा हो जाता है, या जो जब वालदेन बन जाते हैं, ये कह सकते हैं आप, जब आप वालदेन बन जाते हैं ना तो आप अपना आप ठीक करें, फिर इंसान को लाइन पे आ जाना चाहिए, फिर इंसान को सीधा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उसकी औलाद है उसके सामने जो उसको देखेगी और फिर वैसे ही करेगी। फिर और बात क्या है, देखें हमें उनकी शफकत का पता चला, उनकी मोहब्बत का पता चला यहाँ पे, तो दिल में मोहब्बत रखें, खैरख्वाही रखें, ताने ना दिया करें, मोहब्बतों को बांटने वाले बने, मोहब्बतों को आम करें, अपने अखलाक से दूसरों को अपने करीब लेकर आए, चाहे वो हमारे अपने बच्चे ही क्यों ना हो। प्लीज सारी दुनिया के लिए अच्छे अखलाक वाले और अपनी औलाद के लिए बद अखलाक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वालदैन हैं इसलिए हम बद अखलाक हैं, वो भी बद अखलाक ही बनेंगे फिर देखिएगा। हाँ उनको तो हम अखलाक के आला पाए पे देखना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ हम बद अखलाकी करें कोई बात नहीं, हम वालदेन हम कर सकते हैं, नहीं वो भी आपके अच्छे अखलाक के उतने ही मुस्तहिक हैं, उतना ही डिजर्व करते हैं आपसे अच्छा अखलाक जितना कोई भी और आउटसाइडर करता है। तो मैग्नेट बन जाए, आप में अट्रैक्शन होनी चाहिए कि कोई आपके पास बैठना चाहे, ये ना हो कि कोई दूर भागना चाहे। जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वालों की क्या निशानी बताई है? अल्लाह वाले वो हैं कि जब तुम उनको देखो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, ये फरमाया कि जब तो देखो तो उन्होंने ये कोर्स लिया हो वो कोर्स लिया हो, इतने कोर्सेज लेके मैंने जी फलां जगह पे भी कर रही हूँ, फलां भी मैंने लिया हुआ, फलां जगह पे भी मैं ग्रुप इंचार्ज बन गई हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही, ये नहीं, जिसको देख के अल्लाह ही आता जाए, उसके अखलाक इतने प्यारे हो, उसकी बात इतनी मीठी हो, उसके मुंह से फूल झड़ते हो ना कि तीर बरसते हो, अल्लाह अकबर, ताकि हम दुनिया से जब जाएं तो हमें ये तसल्ली हो कि हमारे बच्चे दीन पर कायम छोड़ के जा रहे हैं, हम अच्छी एग्जाम्पल छोड़ के जा रहे हैं, हम उनके लिए बेस्ट रोल मॉडल छोड़ के जा रहे हैं। वो बाहर तो किसी और को बाद में देखेंगे, पहले अपने घर में देखेंगे। देखिए दीन भी क्या होता है, जिंदगी गुजारने का तरीका मैंने आपको बताया था, अमल है अमल, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये चूज कर लिया है, तुम हाँ, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो वो कहते हैं, कालू, उन्होंने कहा, नाबुदु इलाह का, हम इबादत करेंगे आपके इलाह की। अब वो किसको कह रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम को। अच्छा, अब हम ना तो वसीयत भी करने नहीं देते इस टाइम पे। अगर कोई बोल दे कि मेरे बाद तुम ये करो, अच्छा नहीं, ऐसी बातें ना करें, आपने तो ठीक हो ही जाना है। इवन कोई जो है ना ऐसी बीमारी में मुबतला हो चुका है कि उसके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, तब भी उसको वसीयत नहीं करने देते, उसे बीमारी छुपाए रखते, ना वो बेचारा खुद इस्तगफार कर पाता है कि चलो वो ही तौबा कर ले। उसको कहते रहते, नहीं, डॉक्टरों ने कहा आपने ठीक हो जाना। ठीक है, उम्मीद अफजा बातें जरूर करें, मगर किसी को ऐसे अंधेरे में ना रखें। और कोई वसीयत करना चाहता है तो उसको करने दें, यानी कि सुनना ही नहीं है, ऐसी बातें भी ना करें। ऐसी क्यों? मौत तो हर एक को आनी है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है, किसी के कहने से उसको मौत नहीं आ जाना। और ये सवाल वो पहली दफा नहीं कर रहे होंगे, जाहिर है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मेहनत में गुजारी होगी, तो अब जाके ये पूछ रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं, कोई तौहीद का दर्श दिया होगा तो कह रहे हैं ना। अल्लाहु अकबर। अगर इंसान नेक बन जाता है, खुद भी नेक बनता है, तो वो दुनिया से चला भी जाए ना, तो अल्लाह ताला उसके बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। जिसने अपनी जिंदगी इस मेहनत में गुजारी हो, उसके बच्चे चाहे छोटे भी हो, तो खिजर अलैहिस्सलाम की कहानी जो सूरह कहफ में है उससे याद रखें। एक नेक आदमी की प्रॉपर्टी थी, अल्लाह ताला ने उसकी भी हिफाजत फरमाई उसके यतीम बच्चों की खातिर, ताकि उनको मिले। तो अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाते, ना कोई माल, ना कोई घर बार, ना कोई प्लॉट, ना कोई कुछ, ना कोई जायदादें, लेकिन उनको दीन देकर चले जाते हैं, तो हमने सब कुछ दे दिया उनको। और अगर सब कुछ दुनिया का दे भी दिया और दीन ना दिया, तो कुछ भी नहीं दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए क्या छोड़ा था, और दूसरे जो करप्ट खलीफा थे उन्होंने क्या छोड़ा था, पता है आपको? इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। और उनके बेटों का ये था हाल कि एक एक दिन में कितना कितना सदका किया करते थे। और जो करप्ट खलीफा थे उन्होंने अपने बेटों के लिए इतना कुछ छोड़ा, लेकिन दुनिया ने देखा कि उन्हीं के बेटे फिर बाजार में भीख मांगते फिर रहे हैं। और ये सिर्फ तारीख में नहीं, हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं ऐसी चीजें। कहाँ वालदैन होते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, बेटा ये ज़कात लेने तक आ जाता है, नौबत आ जाती, और कहीं वालदैन ने कुछ भी नहीं छोड़ा होता, और बेटा कहाँ से कहाँ तरक्कियां करके पहुंचता है। मेरी अपनी आंखों देखी भी ये चीजें, वो इसलिए सबसे ज्यादा फिक्र उनके दीन की करनी चाहिए। हाँ, आप उनके लिए रिस्क मांगे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा ना कि या अल्लाह इस जगह के रहने वालों को, वो रहने वाले कौन होने थे, नेक्स्ट जनरेशन ही थी ना, उनके लिए रिस्क भी मांगा, उनके लिए अमन भी मांगा, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। लेकिन बस इसी की फिक्र किए रखना, बस ये हो जाए, बाकी दीन हो ना हो उससे कोई परवाह नहीं। फलाना करियर बन जाए इसका, फलान जगह पे ऐसे ये इस ओहदे पे पहुंच जाए, इतने पैसे इसके लिए हम छोड़ जाएं, खुद को भी हलकान कर रहे होते हैं, खुद की भी नमाजें चाहे चली जाएं, हम बच्चों के लिए कुछ बना के चले जाएं, तब हमें तसल्ली होगी, सुकून से मरेंगे, इनका इनके लिए कुछ बना जाए। इनके कितना दीन दे के गए, कितना दीन पे छोड़ा, इसकी कम ही फिक्र होती है। अल्लाह अकबर, कितनी अहम बातें हैं ये। तो उन्होंने ये कह दिया तो कितनी बड़ी तसल्ली है एक बाप के लिए कि हम इबादत करेंगे आपके इलाह की, और इलाह की आबाई का, आपके बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहुम वाहिदा, उनके भी जो जिनको वो पूजा करते थे, जिनकी वो इबादत करते थे, जिनको वो इलाह मानते थे, उस एक इलाह की हम भी इबादत करेंगे। और यहां पे आबाई का मैंने आपको बताया कि आबाई का अबाउ अजदाद दैट इज कौन वो, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ठीक है इनके दादा थे, लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम इनके क्या लगते थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के क्या लगते थे, ताया लगते थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम वो सॉरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम परदादा थे और इसहाक अलैहिस्सलाम दादा थे। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम तो याकूब अलैहिस्सलाम के ताया लगे ना, तो ताया को भी वो कह रहे हैं आबा। हालांकि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद है, तो ये उनको क्यों कह रहे हैं आबा। ताया या चच्चा भी बाप की जगह होता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाला माँ बजा होती है, इसी तरह चच्चा या ताया एक ही बात हो गई ना, बाप के भाई, वो बाप बजा होते हैं, बाप की जगह पे होते हैं। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमा बरदार हैं, हम उसी इलाहुम वाहिद के फरमा। लहू की जमीर किस तरफ जा रही है, इलाहम वाहिदा की तरफ ना, पीछे वही बात आई। इससे पता चला कि वो सच्चे दीन पे थे, उन्होंने अपने आप को यहूदी ईसाई नहीं कहलाया, और वो अपने फरमाबरदारी का कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के आगे सरेंडर करने वाले हैं, और सिर्फ उसके आगे पूरी मुकम्मल सपुर्दगी, अपना दिल दिमाग सब कुछ उसके आगे हमने झुका दिया है, अपनी मर्जी, अपनी खुशी, अपनी गमी। तो मुस्लिम कितना प्यारा नाम है कि वो तक इतनी हजारों साल पहले गुजरने वाले, वो तक इसी की ख्वाहिश के ऊपर मौत चाहते थे कि वान तुम मुस्लिमून, ना मरना मगर तुम मुस्लिम हो, और जिंदगी कैसी चाहते थे कि सारी जिंदगी इस्लाम पे हो। जो ये एक धब्बा नहीं है, ये एक बुराई नहीं है, मुसलमान होना बहुत बड़ी अजीम बात है। आप कभी इस बात पे खुश होते हैं कि शुक्र है मैं मुसलमान हूं? अल्लाह अकबर। और उन्होंने ना अपने आप को यहूदी कहा, ना अपने आप को कुछ और कहा, मुस्लिम कहा। तो यही नाम बेहतरीन नाम है, इसलिए आपसे कोई पूछे तो कहे मैं मुस्लिम हूं, ना कि हम तो आप क्या हैं जी, आप उसको किसी को कह दें आप मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान तो हैं ही, लेकिन फिर और क्या है, और की कोई जरूरत रह जाती है फिर? हनफी हैं, शाफी हैं, भाई आप शरीयतों में जिस जो फिकी मसाइल हैं उसके अंदर किसी के ऊपर भी अमल कर लो, इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर लो, इमाम शाफी को फॉलो कर लो, इमाम इब्ने तैमिया को फॉलो कर लो, इमाम अहमद बिन हम्बल को, किसी को भी फॉलो कर लो, फिकी मसाइल में तो कोई मसला नहीं, मगर उसको ही अपनी शान समझना। अगर आप हनफी हैं तो फिर ही आप ठीक हैं, वरना तो आप ठीक ही नहीं। दूसरा कहता है आप शाफी हैं तो आप ठीक हैं, तो वरना तो आप ठीक ही नहीं। और उससे अपनी पहचान करवाना, ये तो बहुत बाद की चीजें हैं, लेकिन उसी को अपने लिए तमगा समझना और उनको ही सिर्फ अपने समझना और इसी के ऊपर फखर करना, कितना हमने अपने आप को सेक्ट्स में बांट लिया, हिस्से बखरे करके रख दिए हैं। आप बताएं आप क्या हैं? अच्छा, अगर आप चलो कह ही देंगे, अगर आप हनफी हैं तो कौन से वाले हनफी हैं, बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं? अच्छा चलो भैया, आपने एक कह दिया देवबंदी मसलन। अच्छा फिर कौन से हैं, हयाती के ममाती हैं? भैया कहाँ कहाँ तक हम अपने आप को बांटेंगे, एंड में तो सिर्फ अपनी जात ही भी रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। और उन्होंने देखे, अंबिया ने ये नहीं सोचा, हाँ हमारे बच्चे, हम तो पैगंबर हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे ही निकलेंगे, इन्होंने कौन सा कुछ ऐसे करना। कई लोग तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बस हमने बच्चों को बता दिया, अब तो हमें नहीं कोई फिक्र है भाई अपने बच्चों की, हमने तो बड़ा अच्छा इनको चला दिया, कोई गारंटी नहीं है। कितने ही आप नेक हैं और कितनी ही आपकी औलाद नेक हो, तब भी कोई गारंटी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद को आप क्या कहेंगे, उनके कोई आप सोच सकते भी हैं कि उनमें कोई ऐसी कोई दीन से हटने वाला हो सकता है, वो खुद भी पैगंबर हैं, फिर भी उनकी वसीयत क्या है। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम के वो बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादती की थी, वो भी अब तौबा कर चुके हैं, अब नेक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी। और एक बेटा तो बिल्कुल पैगंबर है, फिर भी वो उनसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों की दीन की फिक्र हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो कितने ही नेक क्यों ना हो, यही पैगंबरों का तरीका रहा है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को फारिग भी करने की जरूरत नहीं कि हम फारिग हैं आप तो, क्योंकि बच्चे हमारे चल पड़े हैं सीधे रास्ते पे, तो चलो अब हम हमें कोई बिल्कुल भी कभी पूछने की भी जरूरत नहीं, कभी कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, नहीं फिर भी फिक्र करते रहें। जब नबी अलैहिस्सलाम फिक्र कर सकते हैं, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीने, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दुआएं मांग सकते हैं कि ऐ दिलों को उलटने फेरने वाले, मेरे दिल को जमा देना दीन पे, तो फिर बताएं कि फिर और किसी की आप गारंटियां ले सकते हैं। तो इसको कभी भी गारंटीड ना समझे, ये शैतान इंसान के साथ है, वो पिसला देता है, वो तो मरते दम तक नहीं छोड़ता। अच्छा, अब इन लोगों को बहुत ज्यादा ये चीज के ऊपर फख्र था, जैसे आप पहले भी देखते हैं आपने पढ़ा है कि वो कहते थे हम तो आग में जाएंगे ही नहीं, मगर चंद दिन के लिए अगर चले भी गए, बहुत ही हम ऐसे बुराई हो ही गई तो फिर भी चंद दिन के लिए जाएंगे, वरना हम तो क्या अंबिया की औलादें, और इतना उनको इस चीज के ऊपर फख्र था। आज तक भी यहूदी जो है ना, इस चीज के ऊपर बहुत अपने आप को बड़ी नस्ल समझते हैं, तो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है कि ये भी कोई इंसान है, इंसान ही नहीं समझते, कहते हम चोजन वंस, आज तक भी कहते हैं हम चोजन वंस हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। क्यों इस बात का जोम था उनको कि हम जैसे कहते हैं ना रॉयल ब्लड हैं हम, ठीक है हम रॉयल ब्लड हैं क्योंकि हमारे पैगंबर इतने, और वाकई पैगंबर तो आए थे उनके अंदर, ऐसी बात नहीं है, इतने अंबिया आए कि यानी सारे ही नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के जितने पैगंबर हैं सब के सब इन्हीं में आए, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में ही आए, नहीं समझ रहे, तो ये जिनको बनी इसराइल कहते हैं इन्हीं के अंदर आए, जिन जो अपने आप को यहूदी कहलाने लगे उन्हीं में आए, तो उस चीज को लेकर ये अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि बस इसी फखर में ही हमेशा रहते थे, हमेशा उनको ये चीज जहन में रहती थी, और वो अपने आप को समझते थे कि अब इसके बाद हमें क्या करने की कुछ जरूरत है, हम तो फलां पैगंबरों की औलाद हैं। तो कहा गया तिल का उम्मतुन कद खलत, वो उम्मत थी ना, वो तहकीक गुजर चुकी, यकीनन गुजर गई, वो पिछले लोग थे, वो चले गए दुनिया से। लहा मा कसबत, उस उम्मत के लिए, उस ग्रोह के लिए वो था जो उन्होंने कमाई की, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाई की। अब यानी तुम उनके अमल को लेकर अपने लिए बहुत बड़ा ऑनर का सबब नहीं बना सकते अगर तुम्हारे अपने अंदर कोई अमल नहीं है। ऐसे ही है जैसे कोई अपने बाप के पासपोर्ट पे जाना चाहे, नहीं मेरे बाप का पासपोर्ट है उस पे तो वीजा लगा हुआ है ना, तो ठीक है वो भी तो मेरे अब्बा ही है ना, इतनी भी क्या बात हो गई, मैं उनका बेटा हूं तो मुझे इसमें जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया जाएगा। आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अपना बोर्डिंग पास होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं जहाज में। इसी तरह कयामत के दिन अपना तौहीद का पासपोर्ट होना चाहिए, अपना अमल का बोर्डिंग पास होना चाहिए, तब जन्नत में जा सकेंगे। और आप कहें कि हमारे अब्बा बड़े तौहीद पे थे, हमारी अम्मा और हमारी दादी और हमारी फना, वो तो उनका अमल तो ऐसा था, इतना कुरान पढ़ती थी, इतना ये करती थी, खुद मेरा कितना है? कुछ भी नहीं। अब उन्हीं के बोर्डिंग पास में मुझे भी एंट्री दे दी जाए जन्नत में? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। रोल मॉडल जरूर उनको बना सकते, देखो वो भी तो इतना पढ़ते थे, हम भी पढ़े। मेरे वालिद ने कभी हराम की कमाई नहीं की थी, मैं भी वैसे चलूं, ये तो आप जरूर कर सकते। मगर सिर्फ इस बात पे, वो तो ऐसे थे और ऐसे थे, और उनके गुण गाते रहना, खुद अमल में कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। उनके लिए उनका अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। ठीक है, तो किसी का अमल मुझे जन्नत में नहीं ले जा सकता, किसी की तौहीद मुझे नहीं जन्नत में ले जा सकती। आज भी लोग कहते हैं हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हम तो उम्मती हैं उनके, इसलिए हमें जन्नत का तो बस फ्री टिकट मिला हुआ। ऐसे नहीं, आप तभी जा सकेंगे जब वैसे अमल भी करके दिखाएंगे। कुछ लोग मतलब सहाबा कराम हैं या बड़े बड़े लोग जो इस्लाम में गुजरे, उनके ऊपर ही फख्र करते रहते हैं, आपको क्या पता इस्लाम में तो ये था और ऐसे था ऐसे था। ठीक है, आप जरूर पढ़ें, मगर इसलिए कि हम उनको रोल मॉडल बनाएं, इसलिए कि हम उनके जैसे आमाल करके अपनी भी जिंदगी संवारें, इसलिए नहीं कि बस आप फख्र करते हैं और अमल आपका ऐसा नहीं। दुनिया को आप क्या बताएंगे कि हमारे मुसलमान तो ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, इतनी बहादुरी उनकी, इतनी ईमानदारी। वो कहेंगे आप खुद क्या हो, आप उनका क्या बता रहे हो, आप उनका क्या क्रेडिट ले सकते हो जब आपका खुद का अमल ही नहीं वैसा। तो अल्लाह ताला ने कयामत के दिन इंसान के अपने अमल के ऊपर उसको जांचना है, उसका हिसाब किताब लेना, दूसरों के अमल पे नहीं। इसी तरह हमें इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग दुनिया से जा चुके, उनके लिए उनकी कमाई, तुम्हारे लिए तुम्हारी कमाई। अब आप हर वक्त बैठ के उनके ही जिंदगियों को खोल खोल के और उसके अंदर से निकालते रहे, आज देखे हजरत मुआविया की और अली की जंग हुई थी, ये क्या बात हुई, इसमें कौन हक पे था, कौन बातिल पे था, कौन क्या था, और हजरत आयशा और हजरत अली की जंगे जमल हुई थी तो उसके अंदर कौन किसके ऊपर था, या फिर बड़े बड़े सहाबा को लेकर उनके ऊपर अल्लाह ताला माफ करे और इस अमल से हमेशा महफूज रखे, उनके ऊपर बातें बनाना, कहाँ वो लोग और कहाँ हम, उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। और ये समझना कि हमारी इतनी है, हमारे पास इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है कि हम उनके ऊपर, हमें जेब भी देता है कि हम उनके ऊपर कोई बात कर सके। जो उन्होंने किया वो उनके साथ है, वो अल्लाह ताला के पास वो जाएंगे तो उनका अपना, अल्लाह ताला को बेहतर पता है किसका क्या है। अब हम बैठ के उनके लिए जजमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, अपने अमल की फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारे से उनका नहीं पूछा जाना। तुम अपना बताओ, तुम क्या करके लेकर आए हो, इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। उनका अमल वो लेकर चले गए दुनिया से। जब वैसे भी हमने अपनी जिंदगी में ना, एक आम एक हमारा रवैया ये है कि अक्सर हम बस दूसरों की जिंदगियों को ज्यादा फिक्र में लगे रहते हैं, फलां क्या कर रहा है, फलां कहाँ गया हुआ है, फलां वेकेशन पे किधर है, वहां फलां ने खाया क्या है, पिया क्या है, क्या चीज खरीद ली उसने, बस ये इसी में लगे रहते हैं। वो उसकी कोई बुराई है या अच्छाई है, इसका मुझसे कोई सवाल नहीं होना। हमारी तवज्जो अपने ऊपर कम होती है, सोशल मीडिया पे बैठ के दूसरों को देखते रहने में ज्यादा होती, तो उनका अमल उनके साथ है, फिर हमें बस परेशान होते रहते, देखो आजकल ये हो रहा है, देखो आजकल वो हो रहा है। उनका अमल उनके साथ है, आपका अमल आपके साथ है। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुम नहीं सवाल किए जाओगे इसका जो वो अमल करते थे। इसलिए इस चीज की तरगीब दी जाती है, अमल की बात इसमें क्या है, हम अपने अमल की फिक्र करें, दूसरों के अमल के पीछे ना पड़े रहें कि फलां क्या करता है तो फलां क्या करता है। अल्लाह अकबर, क्योंकि मिसकाला जर्रा तिन भी जहां पर तुल जाना है, जर्रे के बराबर भी भलाई या बुराई तुल जानी है, इंसान को दिखाई जाएगी। वहां पे अपनी फिक्र करनी चाहिए कि दूसरों की, जबकि साफ कह दिया गया तुमसे नहीं पूछा जाना, दूसरों की रिपोर्टें रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे दूसरे की हर जिंदगी की रिपोर्ट मेरे पास जरूर होनी चाहिए। देखिए ना, मुझसे कब्र में पूछा जाना है कि किसने क्या किया था क्या नहीं किया था, ना हशर में पूछा जाएगा, ना ही कब्र के अंदर ये सवाल होना है तुम हनफी थे कि शाफी थे, तुम मालिकी थे, तुम क्या थे। हम इस पे भी बड़ा फख्र करते हैं ना, हमारे भी कि हनफी हैं, जो जो हनफी है वो उस पे फख्र करा, जो शाफी है उस पे फख्र पड़ा, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये नाम निस्बत रख लेना, इस नामों की निस्बत होना, ये क्या आपको फायदा देगी? कब्र में पूछा जाएगा तुम हनफी थे कि शाफी थे। तुम्हें मुस्लिम कहना होगा, मैं मुस्लिम था, और मुस्लिम वो जो फरमा बरदार हो, नाम का मुसलमान नहीं और पार्ट टाइम मुस्लिम भी नहीं। एक आजकल टर्म है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की, अजीब ही लगता है। मुस्लिम नॉन प्रैक्टिसिंग कौन सा होता है भाई? वो मुस्लिम तो होता ही प्रैक्टिसिंग है, इसलिए कि इन्होंने इसका मतलब नहीं ना समझा, इसलिए हमने दो कैटेगरीज बना दी। एक नॉन प्रैक्टिसिंग उसको कह देते हैं जो सिर्फ नाम है, फातिमा है, जारा है, बस ये अहमद है, मोहम्मद है, तो जी ये नाम इनके मुस्लिम वाले हैं लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करते, तो नॉन प्रैक्टिसिंग हो गए, यानी नमाज रोजे वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। और दूसरे हैं जो प्रैक्टिसिंग है, वो बेचारे कुछ नमाज रोजा कर लेते हैं, वो जी प्रैक्टिसिंग हो गए। हालांकि अगर इस वर्ड को समझा जाए तो इसके अंदर ही ये बात है, मुस्लिम सलामा से, यानी जो अपने आप को झुका दे, अपनी विल को सरेंडर कर दे, अपनी मर्जियां छोड़ के अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाए, वो है मुस्लिम। तो आप बताएं इसमें प्रैक्टिस नहीं आ गई? वो तो होता ही प्रैक्टिसिंग है, उसे तो करना ही वो ही है जो अल्लाह ताला ने उसको फरमाया, वो तो है ही फरमा बरदार, ओबीडियंट है। लेकिन आजकल कई लोग अपने आप को तब भी मुस्लिम समझते हैं जब वो कुछ भी ना कर रहे हो, नॉन प्रैक्टिसिंग, लेकिन मुस्लिम आगे लग गया तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग वाले नहीं चल सकते कि कब्र में कहे हाँ जी हम नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे। अपने आप को बहला लो ये कह के, यहां पर आखिरत में नहीं ये चलेगा, वहां पे मुस्लिम एक ही है जो फरमा बरदार है बस।